सूरत अहज़ाब के बाद सूरत सबा शुरू करेंगे, और सूरत सबा वही सूरत है जिस मलका सबका पीछे तذکرہ भी गुजरा। हजरत सुलेमान के किस्से में सूरत नमल में दोनों को जरा रब देखिए, आखिरी आयत में भी क्या पढ़ा सूरत अहज़ाब की, इन्ना अरदना अमानत, हमने अमानत को पेश किया आसमानों जमीन पे। और सूरत सबा शुरू हो रही है आसमानों जमीन की बात से। दूसरा देखिए, सूरत अहज़ाब में नबी सल्लम को खातिमुन नबीजीन कहा गया और उन पर रहमत और सलामती की बात हुई, और मुनाफिकीन के एतराज़ात जो थे उसका तस्करा आया। जबकि सूरत सबा में आपको बशीरों व नज़ीरा कहकर मुशरिकीन के इल्ज़ामात से बरी किया जा रहा है और मुशरिकीन मक्का के एतराज़ात पेश किए जा रहे हैं। इस तरह सूरतें ट्रेन की बोगियों की तरह एक से दूसरी से जुड़ी होती हैं। आइए देखते हैं, सूरत सबा बहुत लाइट सूरत है, शुक्र और नाशुक्र के रवैयों की बात है, 54 आयात है। इसके बारे में भी कुछ ग्लिम्स ले लीजिए। नजूल इसका 4 से 5 नबी में हुआ, नाशुक्री का जायजा लेकर मुतकब्बिर की आदत की पैरवी से बचना, शकुको शुभात को दिल से निकाल कर शुक्रगुजारी के रवैये अख्तियार करने और सरकश की आदत की इताअत से बचना। ये है आज के पारे के अंदर मेन मैसेज। हम हमेशा हुक्मरानों का नाम लेके ना पीछे हो जाते हैं, और दोबारा फिर हम वैसे ही लोगों को इलेक्शन में इलेक्ट करके अपने सरों पे मुसल्लत कर देते हैं। अल्लाह ताला ने इस सूरत में हमें सिखाया है कि जो कौम शुक्रगुजार होती है, अल्लाह उनको दाऊद और सुलेमान जैसे नबी जो हुक्मरान भी होते हैं, और जब कौमें नाशुक्री होती हैं तो उनको फिर अल्लाह फिरौन और शद्दाद जैसे लोगों पे लाते हैं। सूरत सबा उस दौर में नाजिल हुई जब नबी सल्लम पर इल्ज़ाम का दौर था। आले दाऊद से जो शुक्र का मुतालबा था वो ही कुरैश मक्का से था। कुरैश मक्का को कौम सबा के इंजाम से डराया जा रहा है, और ख़ास तौर पर सूरत में आप देखेंगे जिन्नात का बहुत जिक्र है, और अगली सूरत फातिर में मलाइका का बहुत जिक्र है, गो के इधर भी है। तो जिन्नात और मलाइका के अकीदे को तर्क करने का हुक्म है, यानी वो अल्लाह के बेटे या अल्लाह के साथ शरीक नहीं और गैब वो नहीं जानते। आइए देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रुकू नंबर 1 है, आयत नंबर 1 से 9। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, और आप नोट कर लें अलहम से शुरू होने वाली अब अगली सूरत कहाँ आ रही है, वो जुमले याद है आपको, पहला पारा सूरह फातिहा, फिर दूसरे जगह कहाँ आई सूरत अलनाम, तीसरी कहाँ आई 15वें पारे में सूरत कहफ, और आज अलहम से फिर आ गई। हर 7.5-7 पारों के बाद एक अलहमद की ब्रैकेट लगी है। अल्लाह हमें हम करने वाला बना दे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लायक हैं जिसकी मलकियत में वो सब कुछ है जो आसमानों और जमीन में है। आखिरत में भी तारीफ इसी के लिए है, वो बड़ी हिकमतों वाला और पूरा खबरदार है। जो जमीन में जाए और जो इससे निकले और जो आसमान से उतरे और जो चढ़कर इसमें जाए, वो सबसे बाखबर है, मेहरबान नहायत बख्शिश वाला है। कुफार कहते हैं कि हम पर कयामत नहीं आएगी, आप कह दीजिए मुझे मेरे रब की कसम जो आलिमुल गैब है वो यकीनन तुम पर आएगी। अल्लाह ताला से एक जर्रे के बराबर भी चीज पोशीदा नहीं, ना आसमानों में और ना जमीन में, बल्कि इससे भी छोटी और बड़ी हर चीज खुली किताब में मौजूद है। कयामत क्यों आएगी? ताकि वो ईमान वालों और नेकुकारों को भला बदला अता फरमाए। यही लोग हैं जिनके लिए मगफरत और इज्जत की रोजी है, और हमारी आयतों को नीचा दिखाने की जिन्होंने कोशिश की है, ये वो लोग हैं जिनके लिए अलमनाक सजाओं का अजाब है, और जिन्हें इल्म है कि वो देख लेंगे कि जो आपकी जानिब आप के रब की तरफ से नाजिल हुआ है वो सरासर हक है, और अल्लाह गालिब खूबियों वाले की राह की राहबरी करता है। आपको अंदाज से पता चलेगा कि अब ये मदनी नहीं मक्की सूरत है। और कुफार ने कहा आओ हम तुम्हें एक ऐसा शख्स बताएं जो तुम्हें ये खबर पहुंचा रहा है कि जब तुम बिल्कुल ही रेजा रेजा हो जाओगे तो फिर से एक नई पैदाइश में आओगे। हम नहीं कह सकते कि खुद इसने ही अल्लाह पर झूठ बांध लिया है या इसे दीवानगी है। किसके लिए कह रहे हैं? ये इल्जाम लगे थे नबी की जिंदगी में उनके मुंह पे। आज तो अल्लाह ने उनके इतने प्यारे फॉलोअर्स और उनके उम्मती दुनिया में भेज दिए, तो अपने दौर में अमूमन हक वालों को मुखालफतों का ही सामना करना पड़ता है। बल्कि हकीकत यह है कि आखिरत का यकीन न रखने वाले ही अजाब में और दूर की गुमराही में हैं। क्या बस वो अपने आगे पीछे आसमान और जमीन को नहीं देख रहे? अगर हम चाहें तो इन्हें जमीन में धंसा दें या इन पर आसमान के टुकड़े गिरा दें, यकीनन इसमें पूरी दलील है, और उस बंदे के लिए जो दिल से मुतवज्जे हो। अल्लाह हमें भी दिल से मुतवज्जह कर दे। एक आयत है ईमान से मतलब इस रुकू में, और वो क्या है? ईमान वाले हर दौर में जुनूनी कहलाए। आयत नंबर 8 सूरह सबा का मैसेज क्या है? आज भी लोग कहते हैं यू बिकम क्रेजी। आज जरा सा कोई दीन पे ज्यादा अमल करे ना, लोग कहते हैं ये हाइपर हो गया है, इसको अब डिप्रेशन होने वाला है, इसका दिमाग चलने वाला है। आज भी लोग कहते हैं सोच के ठंडे ठंडे चलो, होले होले चलो, दीन भी रखो दुनिया भी रखो। तो देखिए लफ्ज़ भी जिन्ना, जिन्ना का लफ्ज़ है जुनून से। नबी सल्लम का इलाज कराने के लिए उन्होंने एक शख्स को बुला लिया था कि इसको जाकर देखो हो क्या गया, और थोड़ा सा टाइम आपके साथ रहने पर वो मुसलमान हो गया, कि जुनून इसको नहीं तुम्हें है, बीमार ये नहीं तुम हो। अल्लाह हमें सही तरीके से दीन के काम करने वाला बना दे। फिर इसमें लहू माफ़ समावाती व माफ अर्थ में लहू पे गौर कीजिएगा, उसका है जो कुछ आसमानों जमीन में है। क्या है उसका? पहाड़ दरिया सूरज चांद सितारे भी, और आपका 5-6 फुट का वजूद भी। अगर मेरा जिस्म मेरा होता और मेरे जिस्म पे मेरी मर्जी चलती, तो फिर हमारे बाल क्यों झड़ते, हम बूढ़े क्यों होते, हमारी हड्डियों में दर्द क्यों होता, हमारे घुटनों में दर्द क्यों होता, हम दिन ब दिन घुलते नहीं? 40 क्रॉस होने तो दीजिए, देखिए क्या होगा। हर एक अपने ऊपर रख के सोचे, 50 के बाद देखिए क्या दर्द उठेंगे, फिर 60 के बाद क्या निकलेंगे। ये आपके मेरे मुशाहदे में, हमारे देसी कल्चर में औरतें इतनी देरी चलती हैं, कच्ची औरतें। और गोरों को आप देखें 80-80 साल की औरतें फिर रही होती हैं बाहर, कुछ लोग ऐसे होते हैं। लेकिन अगर मर्जी होती तो क्या आप और मैं अपने जिस्म को झुर्रियों से रोक सकते? नहीं रोक सकते। तो लिख लीजिए, अगर हमारे जिस्म पे हमारी मर्जी होती तो ये दिन ब दिन ढलता नहीं, जिसने दिया मर्जी भी उसी की चलेगी। फिर अल्लाह के इल्म की बात है तो लिखिए, कामिल इल्म वाले पर कामिल तवक्कुल भी होना चाहिए, कि वो मुझे जो हुक्म देगा वो मेरे हक में बेहतरी होगा, वो मेरा दुश्मन नहीं है, उसने जो शरीयत दी है वो बेहतरीन है। अब यहाँ लफ्ज़ सूरत शुरू या अलहम से, थोड़ा सा लफ्ज़ अलहम्द और शुक्र को समझिएगा, क्योंकि आगे इसी सूरत में शुकूर का लफ्ज़ आएगा, वहाँ भी कुछ बात इंशाल्लाह हम करेंगे। शुक्र दिल में भी होता है, यानी यू आर ग्रेटफुल, किसी ने आपको पानी दिया यू आर ग्रेटफुल। लेकिन हम्द क्या है? थैंक यू, थक, मैसी, शुक्रिया। और हमारे कल्चर में ठंडा नहीं दिया, हमारा तो शुक्र ये है, हमें कोई जितनी भी बड़ी नेमत दे देना हम उसमें नक्श जरूर निकालते हैं। तो हम्द में जुबान इस्तेमाल होती है, शुक्र दिल के रास्ते कहाँ ढलता है, ये आगे जहाँ लफ्ज़ शुक्र आ रहा है वहां बात करेंगे। अभी अमल का पॉइंट लिखिए, कुरान अल्लाह की नाजिल करदा सच्ची किताब है, जो अल्लाह तक पहुँचने का जरिया है। जमीन व आसमान अल्लाह तला की निशानियां हैं, इन पे गौर करके खालिक तक पहुंचना है, और जाहिर व बातिन की हर नेमत खालिक का करम है, इसी का शुक्र अदा करना है। बोलिए जरा एक दफा शुक्र, कौन सी नेमत सोच के शुक्र कर रहे हैं? दिल में सोचें, कोई चीज सोचिए जिस पे आप शुक्र अदा करें। अब बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अला नेमतिल इस्लाम, अला नेमतिल कुरान, अला नेमतिल हिदायत। कहीं भी पड़े होते, भटक रहे होते, किसी नाली में रेंगता कीड़ा होते, किसी हजर शजर के सामने सजदे में होते, हम तो इस इस्लाम की नेमत का हक नहीं अदा करते, तो क्या सिर्फ मुस्लिम बाय नेम? नहीं, वो मैं ये अकनूत। ए अल्लाह हमें प्रोफेशन के हिसाब से भी मुस्लिम बना दे, और हमारे जिंदगी का एक स्लोगन बना दे कि मैं अल्लाह की फरमाबरदार हूँ। जो कुछ सुलेमान चाहते थे, अब यहाँ से हजरत सुलेमान का वो किस्सा शुरू हो रहा है, जिसके ऊपर कई चीजें हमने देखी। रुकू नंबर 2 को देखिएगा, आयत नंबर 10 से 21, शुक्र के लिए अमल करो। वलकद आतैना दाऊदा मिन्ना फदला, और हमने दाऊद अलैहि सलाम पर फजल किया। ए पहाड़ो, इसके साथ रग़बत से तस्बीह पढ़ा करो, और परिंदों को भी यही हुक्म है, और हमने उसके लिए लोहा नरम कर दिया कि तू पूरी जिरहें बना, और जोड़ों में अंदाजा रख। तुम सब नेक काम करो, यकीन मानो कि मैं तुम्हारे आमाल देख रहा हूँ। अमल के नुक्ते साथ ही ले लें, दाऊद अलैहि सलाम नबी भी थे और हुक्मरान भी थे, अल्लाह ने उनको भी अनयूजुअल नेमतें दी, पहाड़ उनके साथ बोलते थे, परिंदों की बोलियों को सुनते थे, लोहा नरम था। ये सारा कुछ करके जो काम का है ना, वो क्या है कि अच्छे तरीके से काम करो। अल्लाह ताला का ये फैसला है कि मोमिन और मुसलमान कहलाने वाले लोग दुनिया में जो काम करें वो क्वालिटी का करें, जान छुड़ाने वाले काम ना करो, गिरते पड़ते ना करो, आज चीज बनाई कल लेकर आए परसों टूट गई, ऐसी चीजें ना बनाओ। ये आयतें बता रही हैं कि उम्मत मुस्लिमा को उरूज कब मिलेगा, जब वो क्वालिटी कंट्रोल रखेंगे। एंड पे थोड़ी फिर बात करेंगे। अल्लाह ताला ने अमाल के देखने की बात करके क्या फरमाया, दाऊद अलैहि सलाम के नाते हम सबको भी सिखा दिया, और क्या फरमाया आगे, और हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया कि सुबह की मंजिल इसकी महीने भर की होती है और शाम की मंजिल भी, और हमने इनके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया, और इसके रब के हुक्म से बास जिन्नात इसकी मातहती में इसके सामने काम करते थे, और इनमें से जो भी हमारे हुक्म से सरताबी करे हम इसे भड़कती हुई आग के अजाब का मजा चखाएंगे। जो कुछ सुलेमान चाहते वो जिन्नात तैयार कर देते, मसलन किले और मुजस्मे और हौजों के बराबर लगन और चूल्हों पर जमी हुई मजबूत देगें। इतना खाना पकता था उनके पास लोगों को खिलाने के लिए। ए आले दाऊद, इसके शुक्रिया में नेक अमल करो, मेरे बंदों में से शुक्रगुजार बंदे कम ही होते हैं। शर्म नहीं आई? कितनी शर्म आती है जुमले को सुन के, कलीलों में निबादी है शुक्र। फिर जब हमने इन पर मौत का हुक्म भेज दिया तो इनकी खबर जिन्नात को किसी ने ना दी सिवाय घुन के कीड़े के जो इनके असा को खा रहा था। बस जब सुलेमान गिर पड़े इस वक्त जिन्नों ने जान लिया कि अगर वो गैबदान होते तो इस जिल्लत के अजाब में मुबतला न रहते। क्या पता चला कि जिन्नों को गैब का नहीं पता। कौमे सबा के लिए अपनी बस्तियों में कुदरत इलाही की निशानी थी। इनके दाएं बाएं दो बाग थे। हमने इनको हुक्म किया कि अपने रब की दी हुई रोजी खाओ और इसका शुक्र अदा करो, उम्दा शहर और बख्शने वाला रब। क्या खूबसूरत नेमत। लेकिन उन्होंने मुंह फेर लिया तो हमने इन पर जोर के सैलाब का पानी भेज दिया, नाशुक्री की सजा। और हमने इनके हरे भरे बागों के बदले दो ऐसे बाग दिए जो बदमजा मेवों वाले और बकसरत झाओ वाले और कुछ बेरी के दरख्तों वाले थे। हमने इनकी नाशुक्री का बदला इनको दिया, और हम ऐसी ही सख्त सजा नाशुक्रों को देते रहते हैं। अल्लाह हमें नाशुक्री से बचाए। और हमने इनके और इन बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकत दे रखी थी चंद बस्तियां और आबाद कर रखी थी, बरसरे राख थी, खुली रोड पे यानी वो शारे आम पर थी, और इनमें चलने की मंजिलें मुकर्रर कर दी थी। इनमें रातों और दिनों को बामान चलते फिरते रहो। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि हमारे रब हमारे सफर दूर दराज कर दे, चूंकि खुद उन्होंने अपने हाथों अपना बुरा किया इसलिए हमने इन्हें गुज़श्ता अफसानों की सूरत में कर दिया और इनके टुकड़े उड़ा दिए। बिलाशुबा हर एक सब्र शुक्र करने वाले के लिए इस माजरे में बहुत सी इबरतें हैं, और शैतान ने इनके बारे में अपना गुमान सच्चा कर दिखाया। ये लोग सब के सब इसके ताबेदार बन गए सिवाय मोमिनों की एक जमात के। अल्लाह हमें इनके नक्शे कदम पे चलने वाला बना दे। शैतान का इन पर कोई जोर ना था मगर इसलिए कि हम इन लोगों को जो आखरत पर ईमान रखते हैं मालूम कर लें, इन लोगों में से जो इससे शक में हैं और आपका रब हर चीज पर निगेबान है। दो आयात ईमान से मुतल्लिक, सबा 20, मुखलसीन, मुखली नहीं मुखला, लाम पे जबर, मुखलसीन पर शैतान का जोर नहीं चलता। शैतान ने मदद मांगी थी ना कि अल्लाह मुझे क्यामत तक की ढील दे, फिर साथ ही खुद ही कह दिया था कि अल्लाह मेरा जोर नहीं चलेगा इल्ला इबादकल मुखलसीन। अल्लाह हमें मुखलस बना दे ताकि शैतान हमसे मायूस हो जाए। और सबा 21, शैतान इंसान को मजबूर नहीं करता सिर्फ दावत देता है। कहाँ पढ़ा आपने पीछे? सूरत इब्राहिम में शैतान की स्पीच। अब इस हिस्से में दो लफ्ज देखिएगा, सबार और शकूर, सबर और शुक्र, दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। फिर आगे देखे तो इबाद यशकूर आ गया। अब ये कौन सी इबादत है या ये कौन सी नेकी है, थोड़ा सा इस पे बात करना चाहूंगी। हजरत सुलेमान और दाऊद का दौर उस दौर में कहलाता है कि जहां बनी इसराइल को बहुत अरूज मिला, और इसमें इनकी बनाई हुई चीजों से इंसानियत ने फायदा उठाया, यानी इजादात की इबादत, इन्वेंशंस, दुनियावी तरक्की, साइंसी तरक्की, नासा, और इसी तरह से दुनिया की वो बड़ी बड़ी जगहें जहां आज भी सितारों पे कमंडे डाली जा रही हैं, वो मुसलमानों में थी, वो मुसलमानों के हाथ में थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुन नास यनफअहुम लिन्नास, लोगों में बेहतरीन वो है जो दूसरे लोगों के लिए ज्यादा नफामंद हो। ये सब तो सहीहा की रिवायत भी है और बहुत प्यारी रिवायत है। आपने अभी देखा कि बड़ी बड़ी देगों की बात हुई, या अमलून लहू मा यशाउ मिन महारीब व तमासील व जिफान इन कल जवाबी व कदूर रासियात। आपके किचन के कितने बर्तन हैं इधर, पतीलियां, तपीलियां, आपकी देगें, आपके बड़े बड़े बर्तन, कुदूर कहते देग को, कितनी बड़ी होती थी रॉस यार, जिसको अपनी जगह से हटाया ना जाए। और जिफान किसको कहते हैं, कल जवाब, बड़ी बड़ी सीनिया, कितनी बड़ी हौज जितनी बड़ी सीनी। क्या बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर खाना खिलाने का एहतमाम था हजरत सुलेमान उनके दौर में, क्योंकि अच्छे हुक्मरान खाने वाले नहीं खिलाने वाले होते हैं। आज आप अपने ऊपर लेकर सोचिए, हमारे ईवाने फलां ईवाने सदर की इफ्तारियां और गरीबों की इफ्तारियां और गिरफ्तारियां, आज इसको नोट कीजिए कि शरीयत नाफिज कर दी गई तो क्या होगा। बहुत सारे लोग खौफजदा हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बात कर सकती हूँ इधर, बाकी और मुल्कों पे तो आप अपने वजूद के जरिए कर लें तो कर लें। शरीयत नाफिज होगी तो क्या होगा, लोग कहते हैं चोरों के हाथ कटे होंगे, तो क्यों भी आपने चोरियां ही करनी है, फिर सबको सूली पे चढ़ा दोगे, जिना हो गया, क्यों आप सपोर्ट करते हैं बुरों को। एक जुमले में लिख लीजिए, जिस दुनिया के मुल्क में इस्लामी शरीयत नाफिज होगी तो वहां वही होगा जो हजरत सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, यानी फलाहो बहबूद, फलाही ममलिकत बनेगी, वहां का सोशल वर्क मजबूत होगा, फिर आसमान अपनी बरकतें नाजिल करेगा, जमीन अपने खजाने उगलेगी, जमीन पर अदलो इंसाफ होगा, हकदारों को हक मिलेगा, इंसान तो इंसान जानवरों को भी हक मिलेगा। जानवरों को हक दिलाने वाले वाक्या जरा सुनकर देखिए अल्लाह के नबी से। एक मौके पे एक ऊंट ने अपने मालिक की बोझ लादने की शिकायत की तो अल्लाह के नबी ने उसके मालिक को समझाया। इसी तरह एक चिड़िया के अंडे किसी ने तोड़ दिए तो अल्लाह के नबी ने जाकर बताया। तो याद रखिए, हम अपने नबी के तरीकों को अपना लें, उनके बताए हुए तरीके पे सियासत कर लें, तो इंशाल्लाह हमारे मुल्कों में तो अमन होगा, और यही फिर तरीका रेप्लीकेट होगा पूरी दुनिया में। आज अल्लाह के कानून को छोड़कर जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें हैं। देखिए लोग कहते हैं शायद इस्लाम तरक्की के खिलाफ है, इस्लाम तरक्की के खिलाफ नहीं है, दुनियावी तरक्की में किसी का हक नहीं मारना चाहता, तरक्की का फायदा आम इंसानों तक हो ना कि चंद लोगों तक पहुंच जाए। आज आप देख लें यही है, क्योंकि यही जरूरत है। फिर आप देखिए कि आयत 13 में ए मलू आला दाऊद शुक्र की बात आ रही, बार बार इस सूरत में शुक्र है, तो आप देखेंगे कि शुक्र क्या है, मेहनत वाला काम है, सूत ना खाना अल्लाह का शुक्र अदा करना है, जुआ बुराई जिना इनसे रुकना शुक्र अदा करना है, क्योंकि शुक्र बिल जवारे होता है, उस काम से रुकिए जिससे मालिक ने रोका। तो आपको मुझे क्या समझ आया, हम्द करेंगे जुबान से और शुक्र करेंगे अमल से, और वो क्या है कि अल्लाह ने शरीयत नाफिज करने का हुक्म दिया आपके मेरे इस वजूद पे, इससे तो शुरू कीजिए, इससे तो कोई नहीं आपको रोकता। जब उम्मत के 2 बिलियन लोग अपनी अपनी जातों पे शरीयत को नाफिज कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा पूरी दुनिया में वो शरीयत आएगी। और अल्लाह के दीन की कदरदानी करनी है, अल्लाह के कवानीन का मानना, इनकी हदूद में रहना, ये सारा कुछ आपको क्या बताता है कि आप अल्लाह के दीन की कदर करते हैं। आप देखिए, आपको कोई तोहफा देता है, पहन लेते हैं, अगला खुश हो जाता है, आपने किसी को दिया, बाद में देखा उसने पहन लिया इज्जत से प्यार से, आप खुश हैं, और आपने किसी को कोई जोड़ा दिया, बाद में देखा तो वो उसी से पोछा लगा रहा है, दुख होगा ना। अल्लाह ने शरीयत देखने के लिए नहीं दी थी, अल्लाह ने आपको मुझे ये कुछ जो दिया है ये जुबानी शुक्र है नहीं, बड़ा सब्र चाहिए शुक्र करने के लिए। कलीलों में निवाद ये शुकूर में अल्लाह ने हमें बता दिया कि तुम नहीं करोगे, तुम गैरों से मुतासिर हो, तुम डरते हो, तुम जब तक दूसरों से मदद लोगे, जब तक IMF के कर्जों से मुसलमान मुल्क आजाद नहीं होंगे, वहां शरीयत नहीं आएगी, और शरीयत नहीं आएगी तो वहां शुक्र नहीं आएगा, सुकून नहीं आएगा, और जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अच्छा, अब एक खूबसूरत जुमला जिसका मैंने शुरू में वादा किया था, लफ्ज शुकूर आया, शाकिर क्यों नहीं आया। शाकिर होता है नेमतों पे शुक्र करने वाला, और शुकूर वो होता है जिसके नेमते ना भी हो फिर भी मशकूर रहे। अल्लाह अकबर, क्या बनना चाहेंगे आप, शाकिरा या शुकूरा या मशकूरा, नाम बदलें अपने हम सारे, अल्लाह में बना दे। फिर शुकूर होने की अलामत देखनी हो तो मैंने आपको शुरू में सुना दिया, 25 साल बेटे की वफात हुई, मियाँ बीवी उसके कफन दफन के बाद वापस आकर आपस में बात क्या कर रहे थे, अल्लाह का शुक्र है 25 साल तो अल्लाह ने हमें अपने बच्चे से खुश होने का मौका दिया, ए अल्लाह तूने हमें 25 साल तो उसकी खुशियां दिखाई, ये है शुकूर होना। न शुक्री नेमतों को ले जाती है, इससे पहले कि नेमत चली जाए न शुक्री को भेज दीजिए। शुक्र पे एक खूबसूरत जुमला, शुक्र एक ऐसा प्रिजर्वेटिव है जो नेमतों को प्रिजर्व कर देता है, और न शुक्री वो जरासीम है जो नेमत को खराब कर देती है। कॉल लिखा है ताको पीछे इमाम इब्ने कईम का, कैयदुन नेमा बिशुकर, नेमतों को कैद कर लो शुक्र के साथ। चले जरा बोलिए शुक्र। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कैसे कहते हैं? शुक्र है जिस हाल में रखे, 100 शिकवे छुपे होते हैं हमारे एक शुक्र में। लोग आपसे पूछे आपका क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आगे चलते हैं। आयत 14 में फलम्मा खर्रा का लफ्ज जिन्नों के नाते से जो आया, इससे एक जुमला लिख ले कि जिन मुस्तकबिल का हाल नहीं जानते, वरना हजरत सुलेमान के फौत होते ही भाग जाते, जैसे कि अक्सर लोग भाग जाते हैं। तो जिन्नों को भी अल्लाह ने जितना इल्म दिया है उतना ही वो जानते हैं। हजरत सुलेमान और दाऊद के दौर को मैं जब पढ़ रही थी सुबह, तो मेरे दिल में एक दुआ आई थी कि इस दुआ की अमली ताबीर है, आइए अपने और उन सब के लिए करते हैं कि अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन के मिसदाक, इस दुनिया में गलबा भी दे और हमारे घरों में भी इस्लाम आए, हमारे बच्चों में और हमारे मुल्कों में और इस पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला करने वालों में हमें शामिल कर ले। फेथ इन एक्शन, अल्लाह की अता करदा नेमतों पे शुक्र करना है, ना शुक्री हलाकत का बायस बनती है, उससे बचना है। आगे जी रुकू नंबर 3, 22 से 30, अल्लाह की इजाजत के बगैर सिफारिश काम नहीं आएगी। कुलिदुल्लज़ी नज़म तुम मिन दूनिल्लाह, कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा जिनका तुम्हें गुमान है सबको पुकार लो, ना इनमें से किसी को आसमान और जमीन में एक जर्रे का इख्तियार है, ना इनमें इनका कोई हिस्सा है, ना इनमें से कोई अल्लाह का मददगार है। दरख्वास्त यानी शफात भी इसी के पास कुछ नफा नहीं देती सिवाय इनके जिनके लिए इजाजत हो जाए, यहाँ तक कि जब इनके दिलों से घबराहट दूर कर दी जाती है तो पूछते हैं तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फरमाया, जवाब देते हैं हक फरमाया और वो बुलंदो वाला बहुत बड़ा है। दुआ कीजिए यहाँ से उठने के बाद अगर हमें भी कोई पूछे क्या सुन के आई हो तो बोले हक सुन के आई हूँ, और अल्लाह हमेशा हमें हक के सुनने हक के बोलने वाला बना दे, और अल्लाह हमारी नल हक का हक्कम वरजुकना इत्तबा हो वरी नल बातिला बातिलन वरजुकना इज्तना बहू आमीन। पूछिए कि तुम्हें आसमान और जमीन में रोजी कौन पहुंचाता है, खुद जवाब दीजिए कि अल्लाह ताला, सुनो हम या तुम या तो यकीनन गुमराह हिदायत पर हैं या खुली गुमराही में हैं। कह दीजिए कि हमारे किए हुए गुनाहों के बारे में तुमसे कोई सवाल न किया जाएगा, न तुम्हारे अमाल की बाज पुरस हमसे की जाएगी। इन्हें खबर दे दीजिए कि हम सबको हमारा रब जमा करके फिर हम में सच्चे फैसले कर देगा, वो फैसले चुकाने वाला है और दाना। कह दीजिए कि अच्छा मुझे भी तो इन्हें दिखाओ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहरा कर इसके साथ मिला रहे हो, ऐसा हरगिज नहीं बल्कि वही अल्लाह है गालिब बाहिकमत। हमने आपको तमाम लोगों के लिए खुशखबरियां सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, हाँ मगर ये सही है कि लोगों की अक्सरियत बेइल्म है। 2 सेकंड गौर करें इस आयत पे, नबी तो खुशखबरियां दे जाए और डरावे दे दें और उम्मत बेइल्म रह जाए। दुआ कीजिए रब्बी ज़िदनी इल्मा। पूछते हैं कि वो वादा कब है, सच्चे हो तो बताओ, जवाब दीजिए कि वादे का दिन ठीक मुअय्यन है जिससे घड़ी ना तुम पीछे हट सकते हो ना आगे। क्या पता चला, शिर्क से बचने की बातें आपने देखा है पूरे कुरान में, शैतान क्या कोशिश करता है शिर्क में डालता है। लिखिए शुक्र शीन काफरा और उसको बदल दें शीन रा का शिर्क। शैतान का अटमोस्ट गोल क्या है, उसका सबसे बड़ा मकसद हयात क्या है, कि वो हमारा पासवर्ड बदल दे। इब्लीस हमारे पासवर्ड को ला इलाहा इल्लल्लाह की जगह किस में बदलता है, ला इलाहा वला आखिरा। लिखें गलत पासवर्ड, ला इलाहा वला आखिरा। बंदे मोमिन से अल्लाह ताला ने ला इलाहा इल्लल्लाह का वादा लिया था, इब्लीस कहते नहीं ला इलाहा वला आखिरा, ना अल्लाह है ना आखरत है, तागूत बन के सामने आता है। अल्लाह के मुतबादिल खुद को पेश करने वाले सारे ही तागूत हैं। फेथ इन एक्शन कह के क्यामत के दिन चूके किसी की सिफारिश अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं चलेगी, इसलिए हमें खुद अच्छे आमाल करने हैं और अपनी इस्लाह करनी है। आगे है रुकू नंबर 4, 31 से 36, गुमराह कायदीन की पैरवी का अंजाम। किसी को भी वोट डालते हुए जरा सा इस जुमले पे गौर कर लिया करें कि जिसके पीछे चल रहे हैं वो किसके पीछे चल रहा है। आयत नंबर 31 से 36, وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. اور ذرا اس کو اس دور میں لے جا کر سوچئے، نبی کے منہ پہ آ کر کہتے تھے اس قرآن کو نہ مانو. آج بھی کتنے مسلمان ہیں جو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا؟ آج قرآن سننے والے بہت ہیں. اگر میری بات کا یقین نہ آئے نا، تو رات کو تراویوں میں مسجدوں میں جا کر دیکھ لیجیے، شاید ایک بندے کی بھی جگہ خالی نہ ہو، لیکن قرآن کو سمجھنے والے تھوڑے ہیں. آپ تو پتہ نہیں کہاں سے نکل کر آ جاتے ہیں. عموماً دیکھا جائے تب لوگوں کو خاص طور پہ گھروں سے نکل کر آ کر سننے کا شوق نہیں رہا، کہتے گھر سے سن لیں گے. پتہ نہیں کیسے ماحول میں سنتے ہیں، کون سے کلاس روم ہے ہمارے گھروں میں جس میں ہم ماحول بنا کے سنیں. اگر آپ کو آن سائٹ آ کر سننے کا موقع ملے اور آپ نہ آئیں، سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل میں علم کی وہ چاہت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. ہر چیز کے لیے نکلتے ہیں، علم کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ تو کیا کہتے تھے؟ اس قرآن کو نہ مانے. اچھا، اور کفار نے کہا ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانے نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو. اے دیکھنے والے، کاش کہ ان ظالموں کو تو اس وقت دیکھتا جب کہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے. کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. یہ جملے نوٹ کیجئے گا. یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اسے روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے. اس کے جواب میں یہ کمزور لوگ ان متکبروں سے کہیں گے نہیں نہیں بلکہ تمہارا دن رات مکر و فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے کا حکم دینا ہماری بے ایمانی کا باعث ہوا. اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پشیمان ہو رہے ہوں گے اور کفار کی گردنوں میں ہم توک ڈال دیں گے اور انہیں صرف ان کے کیے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. اللہ اکبر. اور ہم نے تو جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا، وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں. کتنا سٹبن رویہ، منہ پہ آ کے کوئی کہہ دے، کتنا برا لگتا ہے. اور کہا ہم مال اور اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں، یعنی تم غریب گھر کے، تمہیں کیا پتا ہمارا کیا سٹیٹس ہے، ہمارے کیا حالات، ہماری کیا مشکلات ہیں. آپ لوگ فارغ ہیں بیٹھے ہیں کریں، آپ کی دنیا اتنی بڑی نہیں ہے نا، اس لیے یہ ٹون ہوتی تھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیے جائیں. تکبر اندر رونت بھری ہوئی ہے. کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اکثر اکثر نہیں جانتے، اکثر نہیں پڑھتے، اکثر شکر نہیں کرتے. ایک بزرگ تھے، وہ دعا کر رہے تھے اے اللہ مجھے اکثر میں نہ کرنا، بلکہ کیا کہتے تھے، مجھے قلیل میں کر دے. تو عمل کے نقطوں میں دیکھیے، ایمان سے متعلق ایک آیت ہے 31 سبا، قائد کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں. زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس سے مراد صرف سیاسی قائدین نہیں ہے، مذہبی رہنما بھی. ہر اس بندے کو فالو کریے جس کی بات سن کر آپ اللہ سے قریب اور گناہوں سے دور ہوں، جس کی بات سن کر اندر جھانکنے کو دل کرے اور باہر والوں کی برائیوں سے بے نیاز ہو جائیں. پھر اس کی بات سنیے جس کی بات سننے کے بعد اپنی پچھلی زندگی پہ شرمساری لیکن اگلی زندگی کے لیے امید ہو، جس کی بات بیلنس لگے، جس کی بات میں تہذیب و تمدن ہو، جو حق بات کرے اور لکنت کے ساتھ بھی بات کرے گا تو اس کی بات مان لے. خوبصورت آوازوں پہ مت ریچیے، پیارے پیارے میٹھے میٹھے اندازوں پہ مت جائیے، غصے گرج والی باتوں سے نہ گھبرائیے، حق کو لیجیے. یہاں آیت میں 3 دفعہ بات اس تو دیفو کی آئی ہے، ضعیف لوگ. یہ کون سے ضعیف تھے؟ جسمانی کمزور؟ نہیں، ایمان کے کمزور لوگ قیامت کے دن جا کر رو رہے ہوں گے کہ ہمارے ایمان کی کمی نے ہمیں تمہارے پیچھے ڈال دیا تھا، ہم تمہیں فالو کرتے تھے، ہم تمہارے چینلز کو فالو کرتے تھے. تو یاد رکھیے، جن کا ایمان کمزور ہو، گناہوں نے جن کو کمزور کیا، گناہ کر کے جنت پانے کے عقیدے رکھے انہوں نے، اللہ سے زیادہ دنیا کی ناراضگی سے ڈرنے والے لوگ کمزور ہوتے ہیں. اور ایسے علماء سو ہر دور میں رہے جو دین میں ملاوٹ کر کے عوام کو آسانیاں دیتے تھے. کسی نے نماز کو ہٹانا چاہا، کسی نے سود کو، کسی نے حجاب کو، اور لوگوں کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں کہ تم فکر نہ کرو، ہم تمہارے گناہ بخشوا لیں گے. یہ سارے کمزور لوگ ہیں. 3 جملے لکھیے گا. جسمانی کمزوری عذر کا باعث بنتی ہے، بیمار ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے، عذر ہے، اللہ معاف کرے گا. ذہنی کمزوری جن کی ہے، حساب میں آسانی ہوگی. حدیث ہے، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، اس میں ایک مجنوں بھی ہے. لیکن ایمان کی کمزوری کل قیامت کے دن پکڑ کا باعث بنے گی. بات سمجھ آ گئی؟ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے لنگڑے تھے، کوئی بات نہیں، انما السبیل، سبیل تو ان پہ ہے. ज़हनी कमजोर वालों का अल्लाह ने हिसाब कोई नहीं लेना, पकड़ होनी है ना तो ईमान की कमजोरी वालों की होनी है। फिर 33 में बल मकरुल लैली वन नहार, इसमें उनकी चालें हैं, साइंस के नाम पर, दुनिया की तरक्की के नाम पर आज उम्मत मुस्लिमा को भी चालें चली जा रही हैं। और वो क्या है कि दुनिया की तरक्की हो गई तो तुम मुसलमान दीन से दूर हो जाओगे। याद रखिएगा, दुनिया में बहार तब आनी है, ये लिख के रख लें, आपके दुनिया के पढ़े लिखे बच्चे दीन के भी पढ़े लिखे होंगे, मस्जिदों के इमाम भी वही होंगे, मुफ्ती और फकीह भी होंगे, और साथ कंप्यूटर पे वो नासा के लिए एप्स भी बना रहे होंगे, और अब इसकी बहारें दिख रही हैं। चंद थोड़े से बच्चे बिगड़े हैं, अभी डैमेज कंट्रोल कर लीजिए, अभी हमारी असल अक्सरियत अच्छी है, अभी नहीं करेंगे ना तो वो गेहूं में वो जो एक छोटा सा कीड़ा छोड़ दें उसको काम करने वो बढ़ाएगा। शैतान पीछे लगा हुआ है, वो हमारी नस्लों के सर पे है, लेकिन अभी उम्मते मुस्लिमा में इतना बिगाड़ नहीं आया जो आगे आने वाला है। अल्लाह हमारी इसलाह फरमा दे। फिर इन एक्शन, किसी इंसान को अपना हाजत रवा या मुश्किल कुशा नहीं समझना, किसी का माल और औलाद क्यामत के दिन काम नहीं आएगा, लिहाजा इस पे फख्र नहीं करना। अगली बहुत प्यारी आयतें हैं 37 से 45, रुकू नंबर 5 है। तकर्रुब का जरिया माल और औलाद नहीं, अमले साले हैं, हाँ मगर वो माल और औलाद जो बाकियात साले बन जाए। वमाम वालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुकर्रिबुकुम इंदना जुल्फा। इस आयत को हाईलाइट भी कर लें, बहुत मिसकंसेप्शन है हमारे कल्चर में, उसका ये इलाज है। और तुम्हारे माल और औलाद ऐसे नहीं कि तुम्हें हमारे पास मर्तबों से करीब कर दें, हाँ जो ईमान लाए और नेक अमल करें इनके लिए इनके अमल का दोहरा अजर है, वो नडर और बेखौफ होकर बाला खानों में रहेंगे। और जो लोग हमारी आयतों के मुकाबले की तगोदो में लगे रहते हैं यही हैं वो जो अजाब में हाजिर किए जाएंगे। कह दीजिए कि मेरा रब अपने बंदों में से जिसके लिए चाहे रोजी कुशादा करता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। तुम जो कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च करोगे अल्लाह इसका पूरा पूरा बदला देगा, और वो सबसे बेहतर रोजी देने वाला है, अल्लाह आपकी हक तलफी नहीं करेगा। और इन सब को अल्लाह उस दिन जमा करके फरिश्तों से पूछेगा, क्या ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे? वो कहेंगे तेरी जात पाक है और हमारा वली तो तू है, ना कि ये, बल्कि ये लोग जिन्नों की इबादत करते थे, इनमें से अक्सर कोई नहीं परिमान था, बस आज तुम में से कोई भी किसी के लिए किसी किस्म के नफा नुकसान का मालिक ना होगा। और हम जालिमों से कह देंगे कि साग के अजाब का मजा चखो जिसे तुम झुटलाते थे। और जब इनके सामने हमारी साफ आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कि ये एक ऐसा शख्स है जो तुम्हें तुम्हारे बाप दादों के माबूदों से रोक रखना चाहता है और इसके सिवा कोई बात नहीं, और कहते हैं कि तो घड़ा हुआ झूठ है और हक इनके पास आ चुका, फिर भी काफिर यही कहते हैं कि ये तो खुला हुआ जादू है। और इन मक्का वालों को ना तो हमने किताबें दे रखी हैं जिन्हें ये पढ़ते हो, ना इनके पास आपसे पहले कोई आगाह करने वाला आया, और इनसे पहले के लोगों ने भी हमारी बातों को छुटलाया था, और इन्हें हमने जो दे रखा था ये तो इसके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंचे। इसको हाईलाइट करें, आज की तरक्की से मरूब ना हो, पहले जो लोग थे ये तो उसका 10वां हिस्सा भी नहीं, लोग सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे, आज ग्रामों और तोलों में बिकता है, यानी पिछले दौर में अल्लाह की नेमतें दुनिया में ज्यादा थी। बस उन्होंने मेरे रसूलों को छुटलाया, फिर देख के मेरा अजाब कैसा सख्त था। दो आयतें हैं इस रुकू में ईमान से मुतल्लिक, सबा 37, इसका टॉपिक लिख लीजिए कि दुनिया की नेमतें इनाम नहीं इम्तिहान है, हर बच्चा इम्तिहान का पर्चा, हर गाड़ी इम्तिहान का पर्चा, हर सेलफोन इम्तिहान का पर्चा। दुआ करें अल्लाह में इतने पर्चों में सुरखरू कर दे। सबा 41, अल्लाह के सिवा हर पैरवी शैतान की पैरवी है, अल्लाह में इससे बचा के रखे। फेथ इन एक्शन, दौलत की फरावानी अल्लाह की रजा की अलामत नहीं, क्यामत वाले दिन सबको अपने अपने अमाल के बदले मिलेंगे। क्या पता चला कि दुनिया वालों की दौलत को देखकर रश्क ना करो, क्या पता कि उनकी पकड़ हो, या उनकी तो पकड़ ना हो लेकिन तुम्हारी पकड़ बन जाए। आगे जी रुकू नंबर 6, 46 से 54, समझाने का दिल सोज असलोक। अब आपने खास तौर पे इसको सुनना है, कैसे, अपने बच्चों को और शागिर्दों को, अगर आप उस्ताद हैं, और अपने अंडर जो भी लोग हैं उनको समझाएं तो कैसे समझाएं, قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى. کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ کر دو دو مل کر یا تنہا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح. تھاٹ پروکنگ سٹائل ہے. لوگ اپنے اندر دیکھو, ہر وقت جو بہت اونچی آوازوں سے غصے اور دھڑلے سے ہم باتیں کرتے ہیں نا, نہیں کبھی اپنے بچوں سے کہا بیٹا آپ جائیے بیٹھ کر سوچئے پھر میرے پاس آئیے. بیٹی سے کہیں بیٹی یہ جو آپ کی فرمائش ہے نا اس کے سیکوینسز کیا کیا ہو سکتا ہے ذرا لکھ کر لائیے. ساری بات اپنی تقریر میں ہی کر دینی, ان کو سوچنا ہی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں امی ابو بہت سٹبن ہے, نعوذ باللہ بہت مین ہے میری موم, اللہ اکبر. ذرا سوچو جب کوئی نہ سنے نا آپ کی بات تو چپ ہو جائیں, جب بہت شور ہو رہا ہوتا ہے نا تو لوگ اور اونچی چیختے ہیں درس دیتے ہوئے. اگر میرے ساتھ ایسا ہونا باتیں کر رہی ہیں نا سسٹر میں چپ, جب میں چپ ہوں گا وہ سوچیں گے ہم نے کیا کی, پھر ان کو سمجھ آ جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں باتیں کریں کریں شروع کریں بولیں بولیں چپ ہو جائیں گی. میں تو نہیں ایسی باتیں کرتی, جب آپ کو سننا ہی نہیں تو مجھے سنانا کیوں ہے. تو ہمیشہ یاد رہے کہ لکھے ہوئے کاغذ پہ نہیں لکھا جاتا, جو سننا ہی نہیں چاہتا آپ اس کو بالکل نہ سنائیں. اور اب یہاں کیا کہا, تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون تو نہیں, وہ تو تمہیں ایک بڑے سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والے. آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ دل سوزی کا جملہ بولے, بیٹا کبھی سوچو میں کیا چاہتی ہوں, میں تمہاری دشمن ہوں, میں تمہاری زندگی خراب کرنا چاہتی ہوں. یہ جہاں آپ شادی کا کہہ رہی ہیں یہاں آپ خوش رہیں گی میرے بیٹے کے, میں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھے آگ میں ڈال دوں, ایسے باتیں کیا کریں. خاموش, اندر گداز ہو, آنکھوں میں آنسو ہو اور آواز روندھی ہو. بہت بڑی بڑی دلیلیں دینے سے بھی زیادہ اثر انداز ہوں گی انشاءاللہ. کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ تمہارے لیے, میرا بدلہ تو اللہ کے ذمے ہے, وہ ہر چیز سے باخبر اور مطلع ہے. کہہ دیجئے کہ میرا رب حقیقی سچی وحی نازل کرتا ہے اور وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے. کہہ دیجئے کہ حق آ چکا, باطل نہ پہلی بار ابھرا نہ دوبارہ ابھرے گا. کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال مجھ پر ہی ہے, اور اگر میں راہ ہدایت پر ہوں تو بس وہی کہ جو میرا پروردگار مجھے کرتا ہے وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت ہی قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور اگر آپ وہ وقت ملاحظہ کریں, اب قیامت کی جھلکیاں تصور کی نگاہ سے دکھائی جا رہی ہیں, جبکہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے اور وہ نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے, اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے. دیکھیے بڑی دیر کی مہر باتیں آتا, لیکن اس قدر دور جگہ سے مطلوبہ چیز کیسے ہاتھ آ سکتی ہے. یہ جو آخری جملہ ہے نا یہ محاورہ عربوں کا, جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اس سے پہلے نہ تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا اور دور دراز سے بن دیکھے ہی پھینکتے رہے, ان کی چاہت اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا, جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا, وہ بھی انہی کی طرح شک اور تردد میں پڑے ہوئے تھے. اللہ امت مسلمہ کا شک دور کر دے اور شریعت کے نفاذ پہ ان کے دلوں کو جما دے. ایک آیت ہے ایمان سے متعلق, سبا 52, موت کے وقت توبہ قبول نہ کی جائے گی کیونکہ توبہ کا چیک ٹائم باؤنڈ ہے, ڈیٹ گزر جائے تو چیک انویلڈ ہو جاتا ہے یا انویلڈ ہو جاتا ہے یا چیک ضائع ہو جاتا ہے. کرنا کیا ہے, توبہ میں جلدی کیجئے. دین کا کام کسی سے صلہ لینے کی امید پہ نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ ہی غیب کو جانتا ہے, اس لیے کسی انسان سے غیب کے حال نہیں پوچھنے. ہدایت صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے, اسی کی طرف رجوع کرنا. خوبصورت تھی صورت, کیوں نہ ہو, رب کا کلام ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا.